ओम शांति, जो 84 की जो मुरली है 24/2/84 की मुरली, और उसमें हमें होमवर्क मिला था क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें 12 क्वेश्चन बनाने के लिए बोले गए थे, तो इसमें क्वेश्चन भी न देखना है न उत्तर देखना है। अब कौन से उत्तर आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये तो आप सबको अभी मालूम पड़ेगा। तो इसमें 12 क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि बाबा व्यक्त देश में व्यक्त दुनिया में आते हैं तो क्या करने के लिए आते हैं? तो क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट में उत्तर मिल ही गया है। अव्यक्त बनाने के लिए आते हैं और आवत से परे ले जाने के लिए आते हैं। तो दूसरा है कि बाबा भी अवतार है तो बच्चे भी अवतार है, तो लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बाबा भी अवतार लेते हैं और हम भी, बाबा ने बोला तुम भी अवतार हो, तो इसमें अंतर क्या है? हम बोली हाँ जी, हाँ बाबा ने आज भी बोला है कि बाबा एक बार ही आते हैं, लेकिन बाबा ने उत्तर और है कुछ उत्तर, तो इस मुरली में बाबा ने बोला है, उत्तर अभी तक नहीं आया। इसमें बाबा ने बोला कि हम ऊंची स्थान से ऊंची स्मृति से नीचे आते, लेकिन हम आते जाते रहते हैं और प्रैक्टिस चलती रहती है। बाबा जब आते हैं, बाबा परम धाम से आते हैं, बाबा को वो स्मृति करना ही नहीं पड़ता है, ऊंची स्थान से आए बोल के नेचुरल है बाबा का। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि अभी तीसरा में बाबा ने बोला कि हाथ का जो बंधन है, हद और बेहद बाबा ने बोला है, तो बेहद का बंधन और हाथ का बंधन इसमें अंतर क्या है? है बेहद का बंधन हमको क्या से क्या बनाता है और हाथ का बंधन क्या से क्या करता है? उसमें 4 आंसर मिलेंगे, तो 4 आंसर बताइए। हाथ का पहले बताइए, फिर बेहद में क्या? हाँ हाँ बोलिए, वो देख के बता रहे क्या? हाँ इसमें बाबा ने हद और बेहद के जो 4 जो बातें बताए हैं, जो हद का जो महिपन है वो विघ्नों में लाता है, श्याम भाई ने उत्तर दिया है, और हद का मेरापन मेरे के फेरे में फंसाता है, और बेहद का महिपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है, और बेहद का मेरापन जो जन्मों के बंधन से छुड़ाता है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो चौथा क्वेश्चन है कि जो अवतार लेकर के अवतरित होके जो आते हैं संसार में, वो किस प्रकार के जो खाते नहीं बनाते, क्योंकि जाने में फिर उनको हिसाब किताब चुकता करना पड़े, ऐसे तो कई प्रकार के खाते हैं, लेकिन बाबा ने इसमें बोला है कि जो उत्तर आ चुका है, व्यर्थ का खाता नहीं बनाते ब्राह्मण जीवन में। हाँ ये तो लंबा मुरली होगा। हाँ तो फिर ही उसका फाइल चालू करेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये तीसरा हो गया है, और चौथा हो गया, अब पांचवा है कि ब्राह्मण जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म का जो बाबा ने बोला कि महत्व, ब्राह्मण महान आत्माएं हैं, क्यों महान आत्मा है ब्राह्मण, तो इसमें बाबा ने बताया कि हम सब अवतरित आत्माएं हैं, अवतरित की जो स्मृति है तो उसमें हमको साधारणता समाप्त हो जाता है। अवतार की स्मृति, अवतरित हुए आत्मा की स्मृति में अगर हम होंगे तो साधारणता हमारी समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो छठा क्वेश्चन है कि हम सब आत्माओं को कौन से निशे और नशे में रहना चाहिए। ऐसे तो सेम क्वेश्चन ही है क्योंकि मुरली लगभग वैसे चलते हैं, चला हुआ है। कौन से निशे, निशे और नशे में रहने चाहिए। हाँ, तो वो तो आम क्वेश्चन ही हो गया है। उत्तर जवाब इसमें बाबा ने बोला कि हम सब अवतरित हुई आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, इस स्मृति में रहना है। तो इसमें अगर रहेंगे तो यही निशे और यही नशे में हमको रहना है। आत्माओं को अवतरित हुई आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, इसी निशे और इसी नशे में रहना चाहिए। तो सातवां क्वेश्चन है कि जैसे कि टेम्परेरी समय के लिए आए हैं और जाना है, अगर ये स्मृति रहती है तो क्या फायदा होगा इसमें हमको। टेम्परेरी समय के लिए जैसे आए हैं और फिर हमको जाना है तो इसमें हम बोलिए और भी। हाँ, बंधन से मुक्त होंगे, डाली पकड़ के नहीं रखेंगे। हाँ, किसी से कोई गलत काम नहीं होगा। तो इसमें उत्तर तो अभी तक नहीं आया, तो इसमें दे रहे लेकिन पहुंच वहाँ पहुंच ही नहीं पाए, देर तो रहे हैं। तो उसमें बाबा ने दो उत्तर, इसमें दो फायदे बताए हैं। फायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें दो फायदे बताए। एक तो उपरम स्थिति होगी हमारी और अपरम अपार प्राप्ति होगी। हाँ, तो इसमें हमको दो फायदे होंगे। तो आठवां क्वेश्चन है, आठवां में जैसे कि देहवान की निशानियां क्या क्या हो सकता है। तो देहवान की चार निशानियां बाबा ने बताए हैं, तो आप सब भी मिलके बताएंगे। हाँ, आराम से चलना, आराम से खाना, ये भी देहवान बाबा ने बताए हैं। हाँ बोलिए। और पीछे हाँ जो इसलिए इसमें बाबा ने चार निशानी बताए हैं। फॉरेन के जो विदेश के टीचर्स के लिए बाबा ने उसमें चार प्रकार की निशानियां हैं जो देहवान को दर्शाता है। उसमें पहला निशानी ये मेरा स्वभाव, दूसरा मेरा संस्कार, तीसरा मेरी रहन सहन और मेरी आदत। ये चार निशानियां बाबा ने बताए। तो नौवा क्वेश्चन है, नौवा जो क्वेश्चन में बाबा ने बताए हैं कि बाबा जैसे कि इसमें बाबा इस संसार में आते हैं तो लोन लेते हैं और आकर के फिर लोन में देते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन अजीब गरीब क्वेश्चन है। तो इसमें पहला बाबा लोन ले रहे हैं फिर आकर के लोन में देते हैं, क्या होगा ये। हाँ, जैसे कि बाबा इस शरीर में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेते हैं, लोन में लेते हैं, तो फिर बाबा यहाँ आकर के हम सबको ये हमारा तन भी लोन में देते हैं। अमानत माना लोन में दिया है और बाबा को बिना पूछे और बाबा को बिना कहे यूज नहीं कर सकते हो, इसमें ये मुरली में बोला। तो इसमें बाबा ने जैसे कि आगे वाला क्वेश्चन है कि टीचर्स को जो फॉरेन के टीचर्स हैं उनको एक ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प अगर आता है तो संगठन में विघटन होता है। तो कौन सा क्वेश्चन होगा वो? और जो शुरू शुरू में आते हैं तो बाबा ने उनके लिए छूट भी दिया है, जो टीचर्स के लिए थोड़ा बाबा ने हाईलाइट किया है वो नहीं है। हाँ ठीक है, वो भी है लेकिन तो इसमें बाबा ने बताए हैं तो टीचर्स को ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए, हम अभी इनके धर्म में आए हैं। हाँ मधुबन बाबा से मिलने आते हैं ना, तो उनको ये संकल्प नहीं आना चाहिए हम अभी इनके धर्म में आए हैं, ये संकल्प नहीं होने चाहिए। तो इससे आगे का जो क्वेश्चन है 11वां, तो इसमें बाबा ने बताए हैं कि बाबा उन टीचरों से मिलने आए हैं जो इतने अच्छे, उनकी विशेषताएं भी बाबा ने बताए हैं, चार विशेषताएं बताए हैं। टीचर्स की चार विशेषताएं बाबा ने सुनाए हैं, उन टीचरों से बाबा मिलने आए। बोलिए। हाँ कोई कोई तो मिल ही रहा है। तो इसमें चार प्रकार के जो सुबान भी दिलाए याद, तो चार प्रकार की जो विशेषताएं हैं, एक तो हम सरिक टीचर से मिलने आए, हम जिन्स टीचर से मिलने आए हैं, और तो फिर उसमें तीसरा है कि सत शिक्षक अथवा निमित्त टीचर से मिलने आए हैं, और सेवा के साथी टीचर से मिलने आए हैं। और ये 12वां क्वेश्चन है कि टीचर्स को अपनी मदद से क्या दिखानी चाहिए। बोलिए। और भी बोलिए। तो इसमें क्वेश्चन लगभग उत्तर बराबर मिल गया है। तो इसमें जैसे कि कर्मातीत वर्मा बाप को और न्यारे प्यारे शिव बाप को अपनी मूर्त से अनुभूति करानी है सबको, तो ये 12 क्वेश्चन है। ओम शांति।
ओम शांति। तो अब हम अभी हमने क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा मुरली को हमने रिवाइज किया, और अभी हम सेल्फ चेकिंग मेथड के द्वारा मुरली को रिवाइज करेंगे। ये जो मुरली है बहुत गहराई से बाबा ने इसमें बताया है ब्राह्मण जीवन के बारे में, और वास्तव में जो हेडिंग है वही सबसे बड़ा सेल्फ चेकिंग है, ब्राह्मण जीवन अवतरित जीवन है। तो अवतरित जीवन है और अवतार का क्या क्या कर्तव्य है वो भी बाबा ने बताया। वो पैगाम देने के लिए आते हैं, श्रेष्ठ कार्य के लिए आते हैं, परमात्मा का परिचय देने के लिए आते हैं, और आते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये बहुत गुह्य मुरली, हमने कई बार पढ़ा तो पता चला कि इतनी गहराई से बाबा ने इसमें हमें ध्यान खिंचवाया है। तो फिर भी इस मुरली से कुछ पॉइंट निकाले हैं। तो इसमें पहला जो सेल्फ चेकिंग का जो पॉइंट है उसमें बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया है कि सदा अपने को अव्यक्त सूक्ष्म फरिश्ता समझकर व्यक्त देश और व्यक्त शरीर में अवतरित होते हो। तो ये अभ्यास हम दिन में कई बार कर सकते हैं, कि हम अपने को अव्यक्त सूक्ष्म फरिश्ता समझकर इस संसार में इस शरीर में हम अवतरित होते हैं कि नॉर्मल ही जैसे दुनिया वाले जगते हैं उठते हैं वैसे ही हम करते हैं। दूसरा है कि अजीब और गरीब की बात हमारे देवेंद्र भाई जी ने बताया, अजीब और गरीब की बात जो बताया कि हमने ये देह क्या दे दिया है, तो बाबा को दे दिया है, बाबा को हमने तन भी दिया है, मन भी दिया है, धन भी दिया है। तो ये तन बाबा को दिया हुआ है, तो बाबा के दिए हुए तन में अपने मतलब अपनी आकर्षण तो नहीं, अपनी लगाव तो नहीं, अपनी झुकाव तो नहीं, अपनी मोह तो नहीं है, उसके लिए स्पेशल कुछ करते तो नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखना है। जैसे कि स्पेशल जो यज्ञ से मिलता है वो जूता अच्छा नहीं लगता, स्पेशल चाहिए। प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, लेकिन स्टाइल वाली हो तो थोड़ा गड़बड़ है। नहीं तो वही हो गया ना, अपने तरफ ध्यान खिंचवाना। हाँ वो समय, लेकिन वो वही तो सेल्फ चेकिंग करने की, हम योगी है, तपस्वी है, हम बैरागी है, सन्यासी है, हम त्याग तपस्या और सेवा के लिए यहाँ आए हैं, यही तो हमें चेक करना है। ब्राह्मण अर्थात ये तीसरा पॉइंट है। ब्राह्मण अर्थात अवतरित आत्मा। बोलने वाला तो आप कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बोलने वाला बोलता ही रहेगा, कुछ भी कीजिए बोलेंगे ही, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए जैसे बाबा ने हमें बताया है, जो मर्यादा मिली उसी हिसाब से चलने में कल्याण है। ब्राह्मण अर्थात अवतरित आत्मा। जब अवतरित आत्मा है हम, तो हमारी समय साधारणता में तो नहीं जाती, हमारी जीवन साधारणता में नहीं जाते, वो हमें देखना है। साधारणता अर्थात क्या? साधारणता अर्थात साधारण, ऐसे ही नॉर्मली कुछ काम नहीं, लेकिन बात कर करके टाइम पास करना, टीवी देखना, ऐसे मुफ्त में घूमने फिरने चले जाना, कुछ काम नहीं है, फिर भी वो जा रहे बोल रहे चलो तो चले गए घूमने के लिए, कहाँ, कुमलगढ़, कहीं भी। एक बात बताएं, हाँ कहीं भी अचलगढ़ हो चाहे गौमुख हो, तो काम कुछ नहीं, फिर भी चलो अब फ्रेंड बोल रहे, साथ भाई बोल रहे, तो जाना, परिवार का तो तोड़ तो निभाना पड़ेगा ना। ऐसे तो ये हमें देखना है कि हमारे समय, हम अवतरित आत्मा है, हमारा महत्वपूर्ण समय है, वैल्यूबल समय है, हम विश्व कल्याण के लिए है, तो हमारा समय ऐसे तो नहीं बीतते जा रहा है। हमें सदा स्मृति रहती है कि अब हम घर जाना है, हमारा एक पैर कहाँ होना चाहिए, तो कब्र में होना चाहिए कि हम अब जाने वाले ही हैं। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार हमें अपनी तरफ खींच तो नहीं रहा है। हम अवतरित आत्मा है, हम अवतार है, परमात्मा के पैगाम देने वाले हैं, परमात्मा से मिलन मनाने वाले हैं, श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं कर रही है, वो हमें चेक करना है। अगर कर रही है तो चेक करके चेंज करना है। बाबा ने यहाँ पे जो लौकिक में जॉब करते हैं, घर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए खास बताया है, लेकिन जो समर्पित है, चाहे जो मधुबन में रहते हैं, उनके लिए भी ये बात आ सकती है कि कोई भी लौकिक कार्य करते, उस कार्य में अलौकिकता की अनुभूति होती है या अलौकिक समझकर करते हो, तो बाहर में जो भी बिजनेस करते हो तो बाबा का कार्य समझ के करें, मतलब सारा पोता मेल जो भी चार्ट है बाबा को दे। लेकिन हम ब्राह्मण हम जो समर्पित है, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेंटर पे रहते हैं, उस कौन सी कार्य को लौकिक कार्य समझे? जो अपना पर्सनल कार्य है, जूता धोना, कपड़ा धोना, स्नान करना, उस सब कार्य को अलौकिकता में बदलना है। सूरज भाई जी, बहुत पहले हमने सुना था कि जब स्नान करते हो तो समझो कि शिव के ऊपर हमने लोटी चढ़ा रहे हैं, कपड़ा धुलाई करते तो बोलो कि अपने भागी को चमका रहे हैं। ऐसे कितना अच्छी अच्छी बातें अगर हमको याद करके अगर करेंगे तो हमारी उन्नति प्रगति होती रहेगी। अगर हम नहीं चेक करेंगे तो हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा, वो टाइम को हम सफल नहीं कर सकते। हम बाबा के महान बच्चे हैं, श्रेष्ठ बच्चे हैं, भगवान के नैनों के नूर है, भगवान के दिल की हीरे की डब्बी है, तो सदा अपने को सरेंडर बुद्धि अर्थात वारिस क्वालिटी आत्मा समझकर चलते हैं। हीरे के अंदर हीरा रहे तो और भी अच्छा है। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। अच्छा आगे है, जब भी कोई बड़ों के साथ निमित्त आत्माओं के द्वारा चाहे बड़ों के द्वारा अगर हमें डायरेक्शन मिलता है, ये खास विदेशी के लिए बाबा बोला है बाबा ने, लेकिन सब में ये बात लागू होती है कि जब भी कभी बड़ों के द्वारा चाहे निमित्त आत्माओं के द्वारा कुछ डायरेक्शन मिलता है तो उसमें कन्फ्यूज तो नहीं होते हैं, शक तो नहीं होता है, लगता है मुझे तंग करने के लिए इसे कर रहा है, अभी टाइम हो गया, टाइम जाने के समय बोल रहा है ये करो, इससे पहले तो कुछ बताया नहीं, और खुद भी कर सकता है लेकिन फिर मेरे को मेरे पे डाल के चला जा रहा है। ना ऐसे होता है, तो हमें चेक करना है, कंफ्यूज नहीं होना। उसमें बाबा ने ये कहा है कि थोड़ा टाइम दो उसको समझने की कोशिश करो, तो उसके अंदर जो छिपा हुआ रहस्य है वो आपको पता चलेगा, लेकिन जरूरी है तो करना पड़ेगा। नहीं लेकिन अब रहना है तो एडजस्ट तो करके चलना पड़ेगा। हम कभी रुकते हैं, हमारा टर्न बनता है डिस्पेंसरी सेवा के लिए, तो बाबा दृष्टि दे रहा है, बोलेगा छाती में जलन है थोड़ा सा सिरप पिला दो, बोलते अब क्या करेंगे, वो थोड़ी देर बाद भी ले सकता है लेकिन उठ के देना पड़ता है। अब माथा खराब करने से अच्छा उनका काम कर दो। नहीं अब योग में बाबा से हम दृष्टि ले रहे हैं, वो संकल्प अच्छा नहीं है, लेकिन वो बाद में भी ले सकता है, पहले भी ले सकता था, वो कुछ भी नहीं है लेकिन अब बार बार वो उनको नहीं दिया तो उनको कितना संकल्प चलेगा, और हमको भी बार बार बुद्धि उधर जाएगी, इससे अच्छा कि काम कर दो बस झंझट का तब। हाँ नहीं अगर आपने नहीं दिया तो हमारा उनका तो संकल्प चलेगा कि देखो ये लड़का जो है ना बोला लेकिन एक काम दिया नहीं, वहां देख के भी तो योग दृष्टि ले सकता है। तो अगर किसी का काम नहीं किया तो हमारा तो संकल्प चलता है कि उनका काम हमने नहीं किया, कर दो और अपना काम शांति से रहो। हाँ हाँ दुआएं तो मिलती है, हाँ इसीलिए कर देने का काम। देवभान की डाली को तोड़ उड़ता पंछी बने हैं, प्रश्न नहीं है, सेल्फ चेकिंग का पॉइंट है। नहीं ये मुरली में हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। सदा संबंध में, सदा सेवा में, और सदा संबंध में बाप और सेवा, बाप और यज्ञ के संबंध में रहते हैं, ऐसे बाबा ने पूछा है उस एक में। सेवा में, पुरुषार्थ में, चाहे धारणा में, नहीं मेहनत की अनुभूति तो नहीं होती है, मेहनत और मोहब्बत की बात है ना, अगर बाबा से मोहब्बत है तो मेहनत की अनुभूति नहीं होती है। लास्ट है, स्वयं संतुष्ट रह दूसरों को संतुष्ट करते हैं, अगर स्वयं संतुष्ट है दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाते वो भी ठीक नहीं, अगर दूसरे को संतुष्ट करके हम स्वयं संतुष्ट नहीं वो भी ठीक बात नहीं। तो बाबा ने यहाँ पे कहा है कि स्वयं संतुष्ट रह दूसरों को संतुष्ट करते हैं, ये बात इतनी थी आपने सेल्फ चेकिंग की पॉइंट। तो हम अगर हम चेक करते रहेंगे कम से कम आज के दिन भी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति।
ओम शांति। 7 टॉपिक है इस मुरली से, पकड़ना पड़ेगा। पहले नंबर में बनाया हूँ कि परमात्मा पैगाम वाहक परमात्मा पैगाम वाहक संगम युगी दशरथ। दूसरा नंबर में है ब्राह्मण संसार के 10 महाअवतार। और तीसरा नंबर में है, बाप की अमानत से माया की खातिरी करते चतुर सुजान, चतुर सुजान। चौथा नंबर में है, अपरम अपार प्राप्ति की आधार उपराम स्थिति। पांच नंबर में है, मेरे मेरे की डाली छोड़ उड़ते कर्मातीत हमजिन्स। छठा नंबर में है, परमात्मा पाप के ऊपर पाप रखते गर्ली फ्रेंड्स। परमात्मा पाप के ऊपर पाप रखते चलने वाले पाव, पैर पैर, कदम पे कदम। सात नंबर में है, डायरेक्शन की रिफ्यूज से बढ़ती कंफ्यूज ब्राह्मण लाइफ। ओम शांति।
ओम शांति। 24/2/18 की मुरली, उसके स्वमान के पॉइंट्स। पहली पॉइंट, मैं पास विद ओनर आत्मा हूं। दूसरा, मैं महावीर अर्थात डबल लाइट, लाइट हाउस माइट हाउस हूं। तीसरा, मैं केयरफुल केयरफुल नहीं ब्लिसफुल और अचल अडोल स्थिति वाली आत्मा हूं। चौथा, मैं सबको संतुष्ट करने वाली आत्मा हूं। पांचवा, गॉडली स्टूडेंट बन सबको सेवा में संतुष्ट करने वाली हूं। और पांचवा, डबल सरेंडर बन तन मन धन, उमंग उत्साह से तन मन धन सबको समर्पित करने वाली आत्मा। फिर गॉडली फ्रेंड्स बन, एक गॉडली फ्रेंड्स के साथ साथ एक माशूक की सच्ची आशिक बन, उनके कदमों पे कदम रखने वाली आत्मा। फिर अपनी मूरत द्वारा ब्रह्मा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे प्यारे शिव बाप के प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूं। फिर अवतरित हुई मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं और मैं निर्विघ्न और विघ्न विनाशक आत्मा हूं। और लास्ट में कि इस सूक्ष्म फरिश्ता देह में अवतरित आत्मा हूं।
ओम शांति। तो इस मुरली से होमवर्क कुछ निकाले हैं, जिसमें कि पहला होमवर्क है, अवतरित हुआ अवतार स्वरूप का अभ्यास, जैसे बाप अवतरित होकर के आते हैं संसार में, हम सभी को आप समान बनाने के लिए, तो वैसे ही हम सभी को इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे बाप अव्यक्त देश से इस साकार सृष्टि पर साकार तन में पराय तन में आते हैं, इस प्रकार से हमें भी यह अभ्यास करना है कि हम अव्यक्त तन के निवासी हैं, इस संसार में आए हैं थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, परमात्म संदेश देने के लिए, परमात्म मैसेज देने के लिए। तो पहला होमवर्क यह है कि हमें भी बाप समान अवतरित होकर के रहना है, आना और जाना। दूसरा होमवर्क है कि जो हम लंबे समय से जिस मैं और मेरेपन में जकड़े हुए हैं, उस हद के मैं और मेरेपन को बेहद में ट्रांसफर करना है। तो बाबा ने कहा कि जो भी आप मैंपन यूज करते हो और जो मेरापन जो आपको झमेले में लाने वाला है, जो आपको डिस्टर्ब करने वाला है, उसको बेहद में परिवर्तन करना है। और तीसरा होमवर्क है संतुष्टता का, जो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन में एक तो हमें संतुष्टता को दो रूपों में देखना है, एक तो जो है कि हमें जो इच्छाएं वर्तमान समय पैदा होती हैं, जो इच्छाएं मन को भटकाने वाली हैं, जो अल्पकाल की इच्छाएं हैं, उनसे अपने आप को संतुष्ट रखना है, उन इच्छाओं को बहुत पैदा नहीं करना है, जो प्राप्त हुआ उसमें सेटिस्फाई होकर के रहना है। दूसरी बात, इस ब्राह्मण जीवन में जो खजाने प्राप्त हुए हैं, जो खजाने मिले हैं, उन खजानों से स्वयं को भरपूर करके संतुष्ट रहना है। और तीसरी बात है कि इस ब्राह्मण जीवन में जो अलौकिक जो डालियां हैं, जो बाबा ने कहा कि बेहद के सेवाधारियों को जो डालियां फंसाने वाली हैं, उन डालियों से अपने आप को मुक्त रखना है, क्योंकि बहुत सारी डालियों को हम पकड़ के रखे हुए हैं। मेरी जिम्मेवारी है, मेरा सेंटर, मेरी सीट, मेरी विशेषता, मेरे गुण, तो इस जो मेरे पेरे पर की जो डाली है, उस डाली को भी हमें छोड़ना है। और एक अगला होमवर्क है कि जो बाबा ने विदेशियों के लिए कहा है कि कन्फ्यूज नहीं होना है, जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, साथ साथ जो डायरेक्शंस मिलते हैं उसको रिफ्यूज भी नहीं करना है, अगर रिफ्यूज करते हैं तो कन्फ्यूज होते हैं। तो एक ये होमवर्क था। और अगला एक होमवर्क है कि जो अवतार हैं, बाबा ने कहा कि आप अवतार हो, जैसे बाप अवतार बन के आते हैं वैसे आप अवतार हो, तो अवतार के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को लिखना है कि अवतार के कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और साथ साथ एक दूसरा होमवर्क है कि जो अवतार हैं, उन अवतार के लिए कौन कौन सी बातें निषेध हैं, क्योंकि अवतार जब संसार में आते हैं तो अपने एक विशेष लक्ष्य लेकर के आते हैं, तो यदि अवतार को अपना उस लक्ष्य को हासिल करना है, वो श्रेष्ठ कार्य करना है, तो उनको इस संसार में रहते हुए कौन कौन सी बातें वो नहीं कर सकते, उनको निषेध है, उसके ऊपर भी चिंतन करना है और लिखना है। तो अवतार के लिए कौन कौन सी बातें जो हैं निषेध है, कौन कौन सी बातें वो हैं। अवतार कहीं कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अवतार यहाँ किसी के साथ कोई भी अपना खाते नहीं, नए खाते नहीं बनाएगा, किसी के साथ अटैचमेंट में नहीं आएगा, और अवतार को हमेशा अपना लक्ष्य क्लियर रहेगा, जिस काम के लिए आए वो काम पूरा करके वापस जहां से आए वहां पर रिटर्न वापस। और अवतार यहाँ के संसाधनों के प्रति आकर्षित नहीं होगा, जो कि वर्तमान समय जो साइंस ने संसाधन दिए हुए हैं, विशेषकर इंटरनेट, जिससे बहुत सारे फायदे भी हैं लेकिन उसमें नुकसान भी है, तो जो अवतार आत्माएं अवतार जो हैं वो उनमें फंसेंगे नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पर हमें ध्यान देना है, जिसको हमें होमवर्क के रूप में अप्लाई करना है। ओम शांति।
ओम शांति। तो ये जो मुरली है 24 फरवरी 84, ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। तो अवतार आते हैं ऊपर से, उनका घर ऊपर है, तो ने होमवर्क ये है मुहावरे और लोकोक्तियां, उसे वो बाद में बताना, तो नेत्रिकट से इडियम्स और प्रोब। तो अवतार जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं, ऊपर से कर्म करने के लिए नीचे आते हैं, उनका वैसे भी हम देखते हैं संसार में जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं अधिकतर ध्यान हमारा लास्ट में घर में घर की तरफ जाता है। जैसे कल बाबा ने कहा था कि तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, जैसे उस फिल्म में 15 मिनट रहते थे, उनको पता होता है कि अभी हमको वापस जाना है, घर जाना है, उनका ध्यान जो है घर की तरफ रहता है क्योंकि पार्ट पूरा होने जा रहा है। इसी तरह से अवतार अवतरित हुए हैं ऊपर से इस धरा पर अपना कर्म करने के लिए, जैसे कर्म पूरा होता है तो उनको याद रहता है हमको कहाँ जाना है, और उसको वहीं अच्छा लगता है जहाँ उसको उसका रहने का स्थान होता है। तो यहाँ इसको हम जोड़ सकते हैं, जल की मछली जल में ही भली, अर्थात उसको अपने जल के अंदर ही ठीक रहेगा, बाहर रहेगी तो तड़फेगी, मर भी जाएगी, बाहर केवल वो थोड़ा उछल कूद करेगी लेकिन जाएगी जल में। इसी तरह से हम केवल यहाँ निमित्त मात्र कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं लेकिन घर हमारा ऊपर ही है, इसलिए हमको भला वहीं लगेगा। अगर हम नीचे फंस गए तो पकड़ के शिकारी आएगा और हमको फंसा के ले जाएगा और फिर फ्राई करके खा जाएगा, इसलिए हम सबको कह रहे हैं अवतरित हम अवतरित हुए इस धरा पर, मछुआरा आएगा पकड़ के ले जाएगा। तो हमको यही समझ के रहना है कि हम अवतरित हुए हैं, हमारा असली घर जो ऊपर ही है, कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो एक ये है। दूसरा है जो विघ्नों की बात आ रही थी, हद का और बेहद का। जब बाबा कहते हैं तुम बेहद में रहते हो तो विघ्नों से मुक्त रहते हो, जैसे हद में आते हैं तो हद के विघ्नों में आकर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, टेंशन आ जाती है, चिंता होती है, तो उन विघ्नों में ना आकर हमेशा बेहद में रहो। अगर बेहद में नहीं है तो विघ्न हमें हमेशा बार बार हराते रहेंगे, उनसे हम मन हमारा कुंठित होता रहेगा, निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, तो समस्याएं समस्याएं आती जाएंगी, दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जाएंगी, ब्राह्मण जीवन नीरस रहेगा। तो इसको कहा जाता है कंगाली में आटा गीला, अर्थात समस्याएं समस्याएं, उसका अर्थ होता है समस्याएं ही समस्याएं। कंगाली कंगाली गरीबी, गरीबी थोड़ा फिर भी ठीक है, लेकिन हाँ लेकिन चिल्ला सबको बनाना नहीं आता है उसको। तो इस तरह से समस्याएं हैं, वो हमारी बढ़ती नहीं जाए, अगर समस्याएं हमारी बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो सिद्ध करता है कहीं ना कहीं हमने हद के मैपन को पकड़ के रखा हुआ है। तो एक ये वाली बात होगी। उसके बाद है एक है टीचर के लिए, बाबा ने कहा है कि टीचर जो है हम जिन्स हैं, हम शरीक हैं और बाप समान है वो, तो टीचर को बहुत औरों से आगे बढ़ने के निमित्त अनेक प्रकार के साधन हैं, ताकि वो अनेक प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, उनको बंधन नहीं है कोई भी, लौकिक छोड़ के समर्पित हैं, सरेंडर हैं, फ्रेंड्स हैं वो, तो उनको बहुत फायदा है, तो फायदा ही फायदा है। उसको कहा जा रहा है चित्त भी मेरी पट भी मेरी, अर्थात हेड भी अपना है टेल भी अपना ही है, कुछ भी कर लो दोनों तरफ अपने ही है। तो माना ये ब्राह्मण जीवन में फायदा ही फायदा है अगर हम बाबा के फ्रेंड्स होकर चलते हैं, टीचर्स निमित्त शिक्षक बनकर चलते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी जो है प्रगति होती रहेगी, उन्नति होती रहेगी। तो इसको कहा जाता है चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ये केवल ब्राह्मण जीवन में ही है। तो ये एक ये वाली बात होगी, कंगाली में आटा गीला भी हो गया, चित्त भी पट भी मेरी होगी, पांचों उंगलियां घी में, इसको ये भी कहा जाता है पांचों उंगलियां घी में है और सिर कड़ाई में है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये इसकी इसका एक हमको बात याद आती है, हमारे चिन्नू काका ही थे, तो टोली किचन में एक बार सिंधी हलवा बन रहा था, रखा हुआ था, माना तैयारियां की जा रही थी, बड़ी कढ़ाई में सारा वो आटा वाटा गूंदा हुआ था, उसमें डाला हुआ था, अभी बनना बाकी था। तो चिन्नू काका जी की आदत थी कि उल्टा चलने की, माना देख उधर है चल पीछे रहे ऐसे, तो पीछे कढ़ाई भरी थी, पीछे धड़ाम से कढ़ाई में वो सारा कढ़ाई में डूब गए और सारा आटे बटे गीले, फिर उठ के फिर उल्टा ही चल रहे हैं। तो ये सिर कढ़ाई में कहीं भारी ना पड़ जाए, वो भी हमको देखना है कि उल्टा न चलते रहे और सोच रहे हमारा जमा ही होता जा रहा है। तो ये चिन्नू काका बात करना चालू ही, मनी अपनी एकाग्रता भंग नहीं होती किसी भी परिस्थिति में, हमारी एकाग्रता भंग ना हो जाए, चाहे बंदर को दे या कुछ भी को दे। तो ये वाला है कि एक चित्त भी मेरी पट भी मेरी, या पांचों उंगलियां घी में, इसको कहा जाता है। एक और है विदेशियों से बाबा ने कहा है, लौकिक और अलौकिक, कि दोनों का ये ना समझकर चलो कि हम लौकिक में रहते हैं, लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर दो, तो वहां भी सेवा का जो क्षेत्र बढ़ता जाएगा। एक हमको सेवा का ये सुनहरा मौका मिला है, हमारा पुण्य का जमा का खाता बढ़ाने का एक अवसर मिला है, दुआओं का खाता जमा करने का अवसर मिला है। तो लौकिक में रहते हुए तो सेवा हमारी नेचुरल होती जाती है, लेकिन लौकिक को भी अलौकिक समझ कर हम अगर सेवा करें, तो इस कहावत को जोड़ा जा सकता है, एक पंथ दो काज, एक हाँ जी एक तीर से दो निशाने। तो हमारा एक ही जीवन है, लेकिन उसमें लौकिक और अलौकिक दोनों तरीके से हम सेवा को बढ़ाते जा रहे दिन प्रतिदिन, तो इस तरीके से ये एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने। तो ये वाली चीज होगी। और फिर बाबा ने कहा है कि अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां आती हैं उनमें फंसे रहते हैं, और तुम उड़ते पंछी हो, उड़ते पंछी हो, तो अगर अनेक प्रकार की जो डालियों को हमने पकड़ के रखा हुआ है जिनसे हमको मुक्त होना है, देवान की डाली है, स्वभाव संस्कार की डाली है, या स्वयं के स्वभाव संस्कार के बजाय दूसरे के स्वभाव संस्कार को भी पकड़ के रखा हुआ है, वो बदल रहा है नहीं बदल रहा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं क्यों नहीं बदल रहा है, इसको तो बदलना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। जैसे कल के वरदान में था क्यों क्या के प्रश्न में चले जाते हैं तो प्रसन्नता खत्म, तो प्रसन्न चित्त तभी रह सकते हैं, क्यों क्या ऐसे वैसे इस सबसे मुक्त होना जरूरी है, नहीं तो अगर हम इसी में रहे तो अंत में कहना पड़ेगा आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये 5 कहावतें हमने सोची थी जो हमने सुना दी। ओम शांति।